सही है। तो अगर मैंने 50-55 साल जिंदगी पाकीजगी में गुजारी हुई तो मेरे फैसले भी सही होंगे। सबसे बड़ी मुश्किल यहां पर है, काश हम लोग इस बात को रियलाइज कर लें। अगर एक आदमी मुझसे ये कहे, मतलब मैं अपने आप से सवाल करूं कि खुदाया मैं तो इतना चाहता हूं नमाज पढ़ूं वक्त के ऊपर, मैं क्यों नहीं पढ़ता, मेरा दिल क्यों नहीं चाहता नमाज पढ़ने का, मैं चाहता हूं मसलन फला दुआ पढ़ूं लेकिन मसलन शबे जुमा आता है, मेरा दिल ही नहीं चाहता। सही है, थियोरिटिकली मैं चाह रहा हूं, प्रैक्टिकली मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है। तो क्यों ऐसा है? उसकी वजह यह है कि थियोरिटिकली आप माइंड से चाह रहे हैं लेकिन जब आपको प्रैक्टिकली फैसला करना होता है, प्लीज तवज्जो, कल्ब से फैसला होगा। और कल्ब क्या है? कल्ब वो सोर्स है जिसके ऊपर सारी कार्रवाई जिंदगी भर की स्टोर हुई भी है। सही है, बस कैलकुलेशन आप ब्रेन से करेंगे लेकिन जब आप फैसला करने लगेंगे तो फैसला कहां से होगा? वो कल्ब से होगा। और कल्ब कौन सी जगह थी? जहां पे ये सारी हरकतें स्टोर हुई हुई हैं। अब एक आदमी कहता है थ्योरेटिकली मैं कन्विंस्ड हूं कि मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिकली मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? आपका फैसला क्यों काम नहीं दे रहा आपके लिए? क्यों आपको उस टाइम पर नहीं उठा पा रहा आपका जहन, आपका दिमाग, आपका कल्ब दर हकीकत, जब नमाज पढ़ने का टाइम था? क्यों? क्योंकि इस कल्ब के ऊपर बहुत सारे और भी चीजें बैगेज में पड़ी हुई हैं और वो इसकी प्रोसेसिंग को सही नहीं होने देंगे। ये इसमें है वायरस। तो अब अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो ये क्या है कि मैं ये चाहता हूं मेरी जिंदगी के फैसले सही हो जाए, स्टोरेज क्लीन करो, इसमें जो कुछ उल्टा सीधा जमा हुआ हुआ है बकौल इनके वायरसेस हैं, वो निकालो सारे। अगर वो सारे निकालने में कामयाब हो गए, जितना आप निकालने में कामयाब होंगे उतना ही आपके फैसले सही होंगे, उतना ही आप टाइमली डिसीजन भी ले पाएंगे। टाइमली डिसीजन क्या मतलब है? शबे जुम्मा आई, दुआए कुमैल पढ़ना चाहता था, पूरा शबे जुम्मा इस पे सोचता रहा, अभी करता हूं अभी करता हूं अभी करता हूं, नहीं पढ़ी। क्या मैं कन्विंस नहीं था कि मुझे पढ़ना चाहिए? कन्विंस तो था, तो पढ़ी क्यों नहीं? पता नहीं क्या हुआ हुआ था, मैं क्यों, ये तुम्हें और मुझे नहीं पता लेकिन सबको पता है कि ये कल्ब की कार्रवाई है, कल्ब के ऊपर ये सारी चीजें स्टोर हुई हुई हैं। अब ये है कि एक मसला मेरे साथ और भी है, मैं इसको भी अर्ज कर दूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद आदम मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद आदे मोहम्मद वाजिल फरज। एक मसला कल्ब स्टोरेज अच्छा या बुरा, फैसले सही या गलत। एक और इशू भी है, स्पॉन्टेनियसली मेरे कुछ फैसले मुझे कुछ सआदतें दिलवाते हैं और मेरे कुछ फैसले मुझे बदबख्ती दिलवाते हैं। यही कल्ब के फैसले, ठीक है। बस एक तो मेरा स्टोरेज का इशू है कि मेरा स्टोरेज क्या है, पूरा बैगेज पीछे से चल रहा है, ये साफ है खराब है मिक्स है कितना मिक्स है क्या चीज है, ये मेरे फैसलों के ऊपर असर अंदाज हो रहा है। दूसरा एक और मसला है वो ये कि मेरे कुछ फैसले अगर सही हो जाए ना तो मुझे कुछ सआदतें मिलनी थी और उसने उस बैगेज को भी शायद रिमूव कर लेना था, लेकिन मेरे कुछ फैसले ऐसे हैं जो मैं ऐसी बदबख्ती लाते हैं कि पिछला बैगेज कुछ भी हो वो बदबख्ती मेरे गले को आ जाती है। अच्छा, अगर किसी को इस बात को थोड़ा सा भी देखना हो तो दुमाई कुमैल के जो शुरू के चंद जुमले उनको देख लीजिए, अल्लाहुम्मा अग़फिर फिर लिया जुनूब अल्लती फना 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 फना, ये कौन से जुनूब हैं जो मैंने पहले किए हैं, उनके असरात ये हैं और उनमें से एक ये है कि तहबिसु दुआ। ओहो, तो दुआ तो इतना बड़ा चैप्टर था सादत का, कुछ गुना दुआ को भी रोक लेते हैं, तो अब बचा क्या मेरे पास? देखिए, वो गुना माफ कर दे खुदाया जो तुनजुलुल बला, बला नाजिल कर देते हैं। ये बला सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, सबसे बड़ी बला तो ये कि कोई खुदा से गाफिल हो जाए। अच्छा, अब साफ बिल्कुल लिखा हुआ है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो दुआ रोक लेते हैं। आप सोचिए, किसी की जिंदगी में अगर दुआ का चैप्टर निकल जाए, उसकी दुआएं बेअसर हो गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका तो जो सबसे बड़ा फ्यूल था वही निकल गया है, इसकी तो हवा ही उखड़ गई है। क्यों? इसकी दुआएं जाया हो गई हैं। और ये करना क्या था सब कुछ? कुरान करीम फरमाता है कि मा याबाउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, अगर तुम्हारी दुआएं ना हो ना तो खुदा तुम्हें पे तवज्जो भी नहीं देगा। लो, इस बेचारे की तो दुआएं खत्म हो गई हैं। तो इसकी जिंदगी में बदबख्ती का एक ऐसा चैप्टर लगा हुआ है इसके पीछे, इसको चाहिए सबसे पहले ये करे कि वो गुनाह क्लियर करवा ले जिससे दुआएं खराब हो रही हैं, और जैसे ही इसकी दुआओं में असर आना शुरू हुआ इसकी जिंदगी कहीं और पहुंच गई। अब मुश्किल हम लोगों के साथ ये है कि हम बेधड़क चले जाएं और इस मैकेनिज्म को ना सोचें, तो फिर रैंडम पे चल रहे हैं, ट्रायल एंड एरर पे चल रहे हैं, कभी सही हो जाएगा कभी खराब हो जाएगा। और अगर हम इस मैकेनिज्म को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें तो कम से कम एक ऑब्जेक्टिव के साथ मूव करेंगे और हमारी काम की जिसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी। तो मिसाल के तौर पर अब मैं अर्ज कर रहा था कि एक हमारे कुछ काम वो होते हैं जो पहले से हमारे बैगेज में पड़े हैं, एक वो होते हैं जो आगे की बदबख्ती को ले आते हैं या खुशबख्ती को ले आते हैं, सआदत को ले आते हैं।